ॐ अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणासिन्ध दीनबन्ध जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज कई एक श्लोक है लेकिन हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंध के 18वें अध्याय का 61 नंबर का श्लोक। श्रीमद् भागवतम स्कंध 6 अध्याय 18 श्लोक 61। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। लब्ध्वा तत् अन्तरं शक्रः निद्रा अपहृत चेतसः दितेः प्रविष्टः उदरं जोग ईशः जोग मायया। लब्ध्वा तदन्तरं शक्रो निद्रापहृत चेतसः दितेः प्रविष्ट उदरं जोगेशो योगमायया। लब्ध्वा पाकर तत् अन्तरं तत्पश्चात् शक्रः इन्द्र निद्रा नींद से अपहृत चेतसः अचेत दिते है दिति के प्रविष्ट घुस गया उदरम गर्भ में जोग ईशः जोग के स्वामी जोगेश्वर जोग जोग सिद्धियों को जोग सिद्धियों की माया या शक्ति से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, इस त्रुटि को पाकर समस्त योग शक्तियों योग सिद्धियां यथा अणिमा लघिमा का स्वामी इंद्र घोर निद्रा में अचेत दिति के गर्भ में प्रविष्ट हो गया। तात्पर्य, परम सफल योगी को 8 सिद्धियां प्राप्त रहती हैं। इनमें से एक के द्वारा जिसे अणिमा सिद्धि कहते हैं वह परमाणु से भी लघु बन सकता है। उस अवस्था में वह कहीं भी प्रविष्ट हो सकता है। इंद्र इसी शक्ति से गर्भिणी दिति के भीतर प्रविष्ट हो गया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। इसके पहले और श्लोक हम लोगों को बोलना है तो आप लोग भी पीछे से बोलिए। 54 नंबर का। सांवत्सरम पुंसवनम व्रतमे तद विप्लुतम धार इष्यसि चेत्तुभ्यम् शक्रहा भविता सुतः। अनुवाद, कश्यप मुनि ने कहा यदि तुम श्रद्धा पूर्वक कम से कम 1 वर्ष तक इस व्रत में लगी रहकर इस पुंसवन अनुष्ठान को करोगी तो तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो इंद्र का वध करेगा। किंतु यदि इस व्रत को करने में कुछ भी त्रुटि रह गई तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का मित्र बन जाएगा। बाढ़ मित्यभुपेत्याथ दिति राजन महामनः। कश्यपाद गर्भ माधत्त व्रतम चांजो दधारसा। हे राजा परीक्षित, कश्यप की पत्नी दिति ने पुंसवन नामक शुद्धि कर्त्री विधि को करना अंगीकार कर लिया। उसने कहा हाँ मैं आपके उपदेशानुसार सब कुछ करूंगी। वह अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कश्यप का वीर्य धारण कर गर्भवती हुई और श्रद्धा पूर्वक व्रत का पालन करती रही। मातृष्व सुरभि प्राय मिंद्र आज्ञाय मानद। सुश्रूषेणाश्रमस्थम दितिम पर्यचरत कविः। सबों का सम्मान करने वाले हे राजा, इंद्र ने दिति का मंतव्य जान लिया। अतः वह अपना स्वार्थ साधने की युक्ति सोचने लगा। इस तर्क का अनुसरण करते हुए कि आत्मरक्षा प्रकृति का प्रथम नियम है, अपने दिति की प्रतिज्ञा को भंग कर उसने दिति के प्रतिज्ञा को भंग करना चाहा। अतः वह आश्रम वासिनी अपनी मौसी दिति की सेवा करने लगा। नित्यं बनात् सुमनसः फलमूल समित कुशान। पत्रांकुरमिदो पश्च काले काल उपाहरत। इंद्र प्रतिदिन जंगल से फूल फल कंद तथा यज्ञ के लिए समिधा लाकर अपनी मौसी की सेवा करने लगा। वह उचित समय पर कूस पत्तियां कलियां मिट्टी तथा जल भी ले आता था। एवं तस्या व्रतस्थाया व्रत छिद्रम हरिर नृप। प्रेप्सु पर्यचर जिग्म मृगे हे व मृगाकृति हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार बहेलिया हिरण को मारने के लिए हिरण की खाल पहनकर छद्म वेश धारण करता है, उसी प्रकार से इंद्र हृदय से दिति पुत्रों का शत्रु किंतु बाहर से मित्र बनकर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक दिति की सेवा करने लगा। इंद्र का मंतव्य दिति के व्रत के अनुष्ठान में त्रुटि निकालकर उसे धोखा देना था, किंतु साथ ही वह नहीं चाहता था कि कोई उसे पहचान सके, इसलिए वह अत्यंत सतर्कता के साथ उसकी सेवा करने लगा। नाध्य गच्छत व्रत छिद्रम तत्परोथ महीपते, चिंताम तीव्रम गतः शक्र केन मे स्यात् शिवम त्विह। हे विश्वेश्वर, जब इंद्र को कोई त्रुटि न मिली तो उसने सोचा अब मेरा कल्याण कैसे हो, इस प्रकार वह गहरी चिंता में डूब गया। एकदा सा तु संध्यायामुच्छिष्टा व्रतकर्षिता, अस्पृष्ट वार्य धौतांग्री सुस्वाप विधिमोहिता, कठोरता से व्रत का पालन करते रहने से अत्यंत क्षीण एवं अशक्त हो जाने से दुर्भाग्यवश दिति ने भोजन के पश्चात मुंह हाथ तथा पांव धोने में लापरवाही बरती और संध्या में ही सो गई। लब्ध्वा तदंतरम शक्र निद्रापहृत चेतसः, लब्ध्वा तदंतरम शक्र निद्रापहृत चेतसः, दितेः प्रविष्ट उदरम जोगेशो जोग मायया, इस त्रुटि को पाकर समस्त योग शक्तियों का स्वामी इंद्र घोर निद्रा में अचेत दिति के गर्भ में प्रविष्ट हो गया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आप लोगों के बीच में बैठ करके प्रसन्नता है, क्लास तो होता रहा लेकिन ऐसे आधा माता जी आधा प्रभु जी ये क्लास 6 महीने के बाद मिल रहा है। हम लोग छठा स्कंध पढ़ रहे हैं, जो अध्याय चल रहा है उसका नाम है राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत। दिति एक व्रत कर रही थी और उसका उद्देश्य था इंद्र का वध करना। विचित्र बात है लेकिन इसके पीछे कारण यह है कि दिति के 2 पुत्र थे। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दोनों बहुत शक्तिशाली पुत्र थे, बहुत बलवान पुत्र थे। खास करके हिरण्याक्ष बहुत ही शक्तिशाली था। भगवान वामन देव उसके विषय में कहते हैं कि दिग्विजय के लिए अकेले निकल गया और गदायुध, ऐसा नहीं कि बहुत साज सामान लेकर के, एक आयुध लेकर के, गदा लेकर के, बस वह अकेले और उसके साथ आयुध एक, लेकिन नात्मानम जैनम, लेकिन पूरे संसार में अपने जोड़ का व्यक्ति नहीं पाया, कोई भी उसे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुए। अब संयोग से लौट रहा था तो रास्ते में भगवान विष्णु मिल गए। ये वामन देव कह रहे हैं, क्षमो धार आगत, और पृथ्वी का उद्धार करके पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे तो रास्ते में मिल गए, ललकारा, भिड़ंत हो गई। और यद्यपि वो बध तो कर दिए, लेकिन नात्मानम जैनम मैंने तदभुर्यम वीर्यनुस्मृतम। वामन देव कह रहे हैं बलि महाराज से कि आपके कुल में अरे बड़े योद्धा हुए, वो पीठ दिखाने वाले नहीं है। खास करके हिरण्याक्ष तो ऐसा योद्धा था कि यद्यपि वो मारा गया, भगवान मार दिए, लेकिन फिर भी भगवान अपने को विजयी नहीं मानते। अरे बध कर दे के उन्हें विजयी मानते हैं। तद वीर्यम भूर्य अनुस्मरण, आज तक उनके उनको उसके बल का स्मरण होता है। भगवान यही अनुभव करते हैं कि हमारा भाग्य था कि हम विजय प्राप्त कर गए, वास्तव में बल तो उसी के पास था। ये तो किसी पुण्य से किसी भाग्य से हम उसको मार डाले। तो नात्मानम विजयी मन्य, यद्यपि यह तथ्य नहीं है, ये तो भगवान ने शिक्षा दे रहे हैं कि जिससे कुछ लेना है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। भिखमंगों को शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन जो हो, दोनों पुत्र बहुत शक्तिशाली थे। अब दोनों पुत्र का वध हो गया तो पर्यतप्यत, कोई भी माँ है अपने पुत्र के प्रति स्नेह होता है, और दिति बहुत चिंतित हुई और उसको इंद्र पर बहुत क्रोध था। वो विचार कर रही थी कि भगवान हमारे पुत्र का वध क्यों करते हैं, भगवान तो सबके प्रति सम है, लेकिन ये इंद्र अपने राज्य के लिए, अपनी रक्षा के लिए अब भगवान से इतना पैरवी किया कि इसके पैरवी के चलते अब इसके फ्लेटरी से, पूजा से प्रभावित हो करके भगवान हमारे पुत्रों का वध कर दिए। वास्तव में अपने गद्दी के लिए, राज्य के लिए, अपने शरीर के लिए ये स्वार्थी हमारे पुत्रों का वध करा दिया, अपने शरीर की रक्षा के लिए हमारे पुत्रों का वध करा दिया, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगे ये जो इंद्र का वध करे। दिति के मन में यह संकल्प आया, पुत्र उत्पन्न करना चाहती है, स्वाभाविक ही इसमें पति का सहयोग चाहिए, बिना पति के सहयोग के तो वह पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकती। और पति का फेवर प्राप्त करने के लिए अब पति की सेवा करने लगे। पर्यचरत, अब खूब सेवा कर रहे, बहुत विनम्रता पूर्वक, और खास करके बहुत मधुर वचन बोल करके मधुरया गिरा। देखिए, स्त्रियों का स्वभाव है वो सेवा करती है, सेवा किए बिना तो शायद वो रह ही नहीं सकती है। उनको सेवा में नियुक्त किया गया है तो ऐसा नहीं है कि उनका शोषण किया जा रहा है, उसके स्वभाव में है, वो सेवा करती हैं, पति की खूब सेवा करती हैं, लेकिन मधुर वचन बोल करके सेवा करती हूं यह तो बहुत कम केस आता है। सेवा तो करती है लेकिन कुछ ना कुछ कंप्लेंट ठोकती रहती है। हम सुने हैं, अरे महाराज इनकी मैं 8 दिन मायके चली जाती हूँ ना तो पूरा घर गंदा हो जाता है। 8 दिन तो हमको अब सब सेटअप करने में लगता है। लेकिन दो स्थिति में स्त्रियां पति से बहुत मधुर व्यवहार करती, एक तो जब है उनको पति से कुछ प्राप्त करना है, उनसे कुछ मांगना है तब अब कठोर नहीं बोलेंगी, या उनसे कुछ गलती हो गई है तब अब देखिए पति के साथ कितना मधुर व्यवहार कर रही है। दीती पति से चाह रही थी कि हमारे गर्भ में बीर्यधान करें, हम पुत्र उत्पन्न करें और खूब अच्छा से सेवा करने लगी और प्रसन्न चित्त से देखती थी, मुस्कुराते हुए देखती थी और सेवा कर रही थी। अब कश्यप जी तो विद्वान व्यक्ति हैं, वे उसके हाव भाव से समझ गए कि इसके मन में कुछ इच्छा है और उसके सेवा से इतना संतुष्ट हो गए कि पति की महिमा बखान करने लगे, कहने लगे कि अरे पति ही स्त्री के लिए देवता है, पूज्य है, भगवान है और उसकी सेवा करने से सती स्त्री किसी भी मनोरथ को प्राप्त कर जाती है, उसके लिए कोई मनोरथ दुर्लभ नहीं है। वे प्रश्न होगा कि भगवान तो एक है, ये पति कैसे भगवान हो गए? और कश्यप जी सिद्धांत दे रहे हैं कि भगवान एक है लेकिन उनके रूप अनेक हैं। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे यज्ञ का विधान किया गया है तो यज्ञ में तो भगवान की आराधना की जाती है, लेकिन अब भगवान की आराधना देवताओं के माध्यम से की जाती है। यज्ञ में जो कर्मकांड चल रहा है तो एक तरह से देवता भी तो भगवान के ही रूप हैं, भगवान की आराधना होती है लेकिन प्रत्यक्ष भगवान की आराधना तो नहीं करते हैं। तो जैसे क्रियाकांड में कर्म में देवता भगवान के स्वरूप हैं और उन देवताओं की आराधना करके व्यक्ति अपने मनोरथ को प्राप्त कर लेता है, तो उसी प्रकार पति भी भगवान का ही एक स्वरूप है। खास करके स्त्री अपने पति की ही सेवा करके अपने मनोरथ को प्राप्त कर लेती है। और सिद्धांत बोले और कहे कि हम संतुष्ट हैं, बाढ़ हम जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। तुरंत कोई कह सकता है कि अरे वो समझे नहीं कि उसके मन में क्या, इतना तो समझे कुछ मांगना चाहती है तो पहले विचार करना चाहिए ना क्या मांग रही है, कैसे इतनी स्वतंत्रता दे दी है, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि स्त्रियों का ऐसा व्यवहार है, दीति का ऐसा व्यवहार था कि जड़ी भूत वे कश्यप जी बिल्कुल उसके अधीन हो गए, उसके मोहित हो गए, उसे अधीन हो गए। अरे विद्वान व्यक्ति कैसे अधीन हो जाएगा, उनको तो कुछ विचार करना चाहिए। और कह रहे हैं कोई स्त्री एक पुरुष को अपने अधीन कर ले तो ये कोई नई बात नहीं है, कोई विचित्र बात नहीं है। और सिद्धांत दे रहे हैं कि स्त्रियों की रचना ही इसीलिए की है, ब्रह्मा जी स्त्रियों को इसी कार्य के लिए बना। एकांत मतिम दृष्टवा, पहले ब्रह्मा जी सृष्टि के लिए व्यवस्था किए, चाहते थे कि सृष्टि का विस्तार हो और पुरुषों की सृष्टि की है। बहुत ऋषि मुनि थे, उनको जिम्मेवारी दी गई कि आप सृष्टि का विस्तार कीजिए, लेकिन एकांत मति अब ब्रह्मा जी ऐसा अनुभव किए, इनमें तो आसक्ति है ही नहीं है। एक जगह आवास था, वो कहीं तीर्थ में जाते थे वहीं रह जाते थे। अब तीर्थ में चले गए वहीं रह गए, सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था। तो ब्रह्मा जी अपने शरीर से वो स्त्री की रचना किए और यया मतिर हृता। अब जब स्त्री की रचना किए तो पुरुषों का मति वह खींच ली। आप अनुभव कर सकते हैं कि जो स्त्री के साथ हैं वो तो घर छोड़ करके बहुत दिन तक दूसरे जगह नहीं रह सकते, दो चार दिन में ही चिंता होने लगती है। और सुखदेव गोस्वामी टिप्पणी दे रहे हैं कि कश्यप जी स्त्री के अधीन हो गए तो यह कोई नई बात नहीं है, विचित्र बात नहीं है। नहीं चित्रे ही जोशीते, स्त्री किसी को पुरुष को अधीन कर लेती है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी इसी कार्य के लिए सृष्टि ही किए। जब दिति ऐसा अनुभव करने लगी कि हमारे पति अब बिल्कुल हमारे अधीन है, तो अस्पष्ट शब्दों में वह कहे कि यदि आप हमको वर देना चाहते हैं तो हम पुत्रम इंद्र हणम ब्रीड़े, हम ऐसा पुत्र चाहती हूं जो इंद्र का वध करे। अब इतना सुनते ही कश्यप जी का होश उड़ गया, कि ये तो बहुत भारी अधर्म में कर दिया। इंद्र का वध है, इंद्र देवता है, कश्यप जी के अपने पुत्र हैं, अब वो तो बहुत भारी चिंता में पड़े, ये तो बहुत भारी अधर्म उपस्थित हो गया, इंद्र का वध। वे स्त्री स्वभाव पर टिप्पणी किए, अपने ऊपर धिकारने लगे कि मैं क्यों स्त्री के अधीन हो गया, क्या उसका कोई दोष है। और विचार कर रहे हैं कि ना, हम में इंद्रिय तृप्ति की वासना है, इसके चलते हम स्त्री के अधीन है। और जो हो, एक बार तो फसावट महसूस किए, लेकिन कश्यप जी विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए, अब तो वचन दे दिए हैं, इसकी भी रक्षा करनी है और अधर्म भी न हो। और उसके लिए वे दिति से कहने लगे कि ठीक है, तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन एक शर्त है, यदि तुम एक साल तक एक व्रत का अनुष्ठान करोगी तब तुमको ऐसा पुत्र होगा जो इंद्र का वध करने वाला होगा। वैसे कश्यप जी को संस्कृत बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि यदि तुम एक साल तक इस व्रत को धारण करोगे तो एक पुत्र होगा, इंद्र हा देव बांधव। संस्कृत कह रहे हैं कि इंद्र हा देव बांधव, यदि इसका विच्छेद करेंगे तो अवग्रह डालने से इंद्र हा मतलब मारने वाला, और अदेव बांधव जो असुरों का बंधु होगा। तो दिति तो इसी रूप में इसको ग्रहण कर रही है, लेकिन इसी वाक्य को अब खंड करके रख प्रस्तुत किया जाए तो अर्थ दूसरा भी हो जाएगा। इंद्र हा का अर्थ अनुगामी भी होता है, और इंद्र हा देव बांधव, इंद्र का अनुगामी देवताओं का बंधु। जो हो, यह भी अर्थ है, लेकिन हम लोग यथा श्रुत अर्थ लेकर के चलेंगे। जैसा श्रील प्रभुपाद जी तो पाठे दूसरा लिए हैं, धारयिष्यति चेत्तुभ्यं सक्रहा भविता सुत, यदि तुम एक साल तक व्रत का पालन करोगी तो तुम्हें ऐसा पुत्र होगा जो इंद्र का वध करेगा। अब तो दिति को बहुत उत्साह था, वो कहने लगे कि हाँ हम व्रत का पालन करेंगे। अरे वो तो इतना दुखी थी और इंद्र के प्रति इतना क्रोध था कि एक साल क्या, वो 10-20 साल का व्रत करने को तैयार थी। वो कहे कि एक साल व्रत करना होगा, वो तैयार थी और कहने लगे कि बतलाइए क्या व्रत है, उसके विषय में क्या निषेध है, क्या विधि है, किस चीज का त्याग करना है और किस चीज का संपादन करना है, सब बतलाइए, हम खूब अच्छा से व्रत को करूंगा। तो सबसे पहले कश्यप जी उसको निषेध बतला रहे, 30-31 चीज का निषेध बतलाए। सामान्य रूप से सबसे कह रहे हैं कि ये जो व्रत करना है तो त्याग करना होगा, किस किस चीज का त्याग करना होगा, उसमें पहला बतला रहे हैं कि न हिंसा भूत जातानि। निषेध में बतला रहे हैं कि किसी भी प्राणी के किसी प्रकार से हिंसा नहीं करनी। हिंसा का अर्थ होता है कष्ट देना, हिंसा केवल किलिंग के अर्थ में, मारने के अर्थ में नहीं होता है। तो व्यापक अर्थ में लेंगे तो किसी भी प्राणी को किसी प्रकार, मतलब मन से, वचन से और शरीर से, कोई कष्ट नहीं देना है। अब देखिए व्रत जिसका उद्देश्य है वध करना, लेकिन कश्यप जी विद्वान व्यक्ति हैं, वे भक्ति के सिद्धांत को समझ रहे हैं और उनके मन में है कि यदि यह भक्ति के सिद्धांत पर चलेगी तो इसके चित्त में उत्थान हो जाएगा, इसका चित्त बदल जाएगा। तो इसी से उसको उपदेश दे रहे हैं व्रत का, और कि किसी भी जात, किसी भी व्यक्ति प्राणी का किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करना है। न सपे न नृतम बदेत, न किसी को गाली देना है, न साप देना है, न झूठ बोलना है, और न छिंद्यात नख रोमाणी, नख नहीं काटना है, बाल नहीं काटना है, और कोई भी अमंगल चीज जैसे हड्डी है, ये कपाल है, ये सब का स्पर्श नहीं करना है, और नापसु स्नायात न कुप्यत न संभाषित दुर्जन, जल में घुस करके स्नान नहीं करना है, किसी पर क्रोध नहीं करना है और दुष्ट व्यक्ति के साथ बात नहीं करना है। तो ऐसे कई एक निषेध बतला रहे हैं, तो सामान्य रूप से 10 निषेध बतलाए, इसके बाद 5 निषेध बतलाए विशेष करके भोजन के विषय में, किसी का जुट्ठा नहीं खाना है या देवी का प्रसाद नहीं खाना है या चिट्टी से युक्त अन्न नहीं खाना है और कोई बहुत गंदा व्यक्ति प्रसाद को ला रहा है उसको नहीं खाना है या रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ गई तो उस प्रसाद को नहीं खाना है। दृष्टम उदक्यया, देखिए इस समय बहुत झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है कि भाई कोई स्त्री रजस्वला होती है तो जानबूझ करके तो नहीं होती है, ये तो प्रकृति का नियम है, क्यों इस पर इतना बंधन लगाया गया, क्यों रोका जाते, उचित नहीं है, एक विचार ऐसा कहता है। लेकिन अब उनका पक्ष जो हो, शास्त्र के अनुसार जब स्त्री रजस्वला है तो उस समय वह किसी खाद्य वस्तु का स्पर्श करती है, पके हुए भोजन का स्पर्श करती है तो अपवित्र अपवित्र माना जाता है, वो रंधन करती है तो उसको अपवित्र माना जाता है। और केवल यह भावना की बात नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल ऐसी घटनाएं हैं कि उसके आधार पर कहा जा सकता है कि यह तथ्य है। गांवों में यह प्रसिद्धि है कि कोई रजस्वला स्त्री आचार इत्यादि को छू देती है तो सड़ जाता है। हम लोग तो गांव में यही सुनते आए हैं, और गांव की ही बात नहीं है, एक बड़े विद्वान हैं, वो एक घटना सुना रहे थे कि जो डॉक्टर ये वंश परंपरा का सिस्टम बतलाए, इस समय चेक कर लेते हैं ना कौन किसका पुत्र है, और उस डॉक्टर के जीवन की एक घटना सुना रहे थे कि एक लड़की थी, ज्योति थी, और उससे एक दिन वे फूल मांगे। वे कहीं जा रहे थे, किसी बागीचे में एक गुलाब का फूल था खूब अच्छा, तो चले गए अपने आवास पर, गए तो एक लड़की को भेजे कि जाओ उस बागीचे में गुलाब का फूल है उसको तोड़ लाओ। वो लड़की गई, फूल तोड़ करके लाई, उनको दे दी, तो डॉक्टर कहता है ना ना तुम फूल वह नहीं लाई जिस फूल को मैं कहा लाने के लिए, तो उस फूल को तुम नहीं लाई हो, जाकर के उस फूल को लाओ। तो वहां तो एक ही फूल था, वो कहने कहीं दूसरे जगह से लाई हो, वो तो कहे कि नहीं नहीं वही मैं फूल लाई हूं, वहीं से लाई हूं। और डॉक्टर कहने कि ना वह फूल नहीं है। तब वह लड़की बोले, अरे डॉक्टर तुमको समझना चाहिए कि मैं रजस्वला हूं। जब इतना कहे तब डॉक्टर समझ गए, कहने का आशय यह है कि रजस्वला स्त्री उस फूल का स्पर्श कर दी, छू दी, तो उसमें परिवर्तन हो गया, कुंभला गया। तो हम केवल यह बात कह रहे हैं कि यह केवल कल्पना नहीं है, तथ्य है, जो हम इस विवाद में नहीं जाना चाहते। यहां थोड़ा सा अवसर आ गया, जो निषेध बतला रहे हैं कश्यप जी अपने पत्नी को, तो कह रहे हैं कि व्रत का पालन करना है, तो भोजन के विषय में कुछ निषेध है उसमें, या भी कि कोई रजस्वला स्त्री जिस भोजन पर दृष्टि डाल दे उसका आहार नहीं लेना है, और घर से बाहर जाने के विषय में सात निषेध बतलाए कि कभी भी बिना चादर ओढ़े घर से बाहर नहीं जाना है, बिना बाल को बांधे घर से बाहर नहीं जाना है, बिना मुंह धोए आचमन किए घर से बाहर नहीं जाना है। तो ऐसे घर से बाहर जाने के विषय में सात नियम बोले, और आठ नियम सोने के विषय में। सोने के विषय में निषेध बतलाए कि बिना पैर धोए नहीं सोना है, और पैर धो करके भी गीले पांव नहीं सोना है, पैर पोंछ करके सोना चाहिए, और उत्तर के तरफ सिर करके नहीं सोना है, पश्चिम के तरफ सिर करके नहीं सोना है, जूठे मुंह नहीं सोना है, अच्छा से मुंह धो करके और मुंह पोंछ करके सोना है। तो ऐसे निषेध बतलाए दीति सबको स्वीकार की, बहुत खुशी खुशी स्वीकार की, व्रत प्रारंभ की कर रही थी। अब ज्यों ही इंद्र को यह पता चला कि हमारे वध करने के लिए, पुत्र उत्पन्न करने के लिए व्रत कर रही है, तो बहुत भारी चिंता में पड़े। अब विचार करने लगे कि हम कैसे उसके व्रत को खंडित करें, और उसके विषय में वे निर्णय लिए कि हम उसी के आश्रम में निवास करें। उसी के आश्रम में आ गए कि ज्यों ही कोई अवसर आएगा, ज्यों ही उसके व्रत में कोई कमी आएगी तो उसका मैं लाभ लूंगा। तो एक बालक का रूप धारण करके, छोटे बच्चे का रूप धारण करके, और उसी के आश्रम रहने लगे, और खूब अच्छा से सेवा कर रहे थे। जैसा हम लोग कई एक श्लोकों में पढ़े कैसे सेवा कर रहे थे, समय पर पानी ला देते थे, हवन की सामग्री ला देते थे, फूल ला देते थे, पत्ता ला देते थे, शुद्ध मिट्टी ला देते थे। दीति प्रसन्न थी, उसको संशय नहीं था कि हमारे व्रत के दोष का अन्वेषण कर रहा है, छिद्र का अन्वेषण कर रहा है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वैसे ही सेवा कर रहे थे, वैसे ही रह रहे थे सेवा के भाव में, जैसे कोई बहेलिया है तो मृग का चर्म पहन करके, मृग का चर्म धारण करके बहेलिया पर बाण का निशाना करता है। इसलिए कि बहेलिया ने मृग को ये भ्रम हो कि कोई मृग ही बैठा है, तो वैसे ही कपट पूर्वक सेवा कर रहे थे। इनका उद्देश्य था दीति के व्रत को भंग करना, उसके गर्भ को नष्ट करना, लेकिन सेवा का भाव लेकर के, सेवा का व्यवहार लेकर के रह रहे थे। अब बहुत दिन तक व्रत में कोई त्रुटि नहीं आई, और इंद्र तो बहुत चिंता में पड़े, कह रहे हैं विधि मोहित। अब विधाता का ऐसा विधान है, बहुत दिन से व्रत कर रही है, और एक दिन व्रतकर्षिता वो व्रत से थक गई थी। अब एक दिन वो कुछ भोजन की और बिना मुंह धोए बेड पर लेट गई, सोची होगी कि थोड़े देर में हम धो लेते हैं, और तब तक उसको गाढ़ निद्रा आ गई, निद्रया पहृत चेतस। अब थकी थी, थकी मांदी थी, अब उसको झपकी आने लगे, उसी में उसको याद नहीं रहा क्या मुंह नहीं धोई, और बिना मुंह धोए सो गई। अब इंद्र को अवसर मिला और तुरंत उसके गर्भ में प्रवेश कर गए। भी एक प्रश्न होगा कि गर्भ में कैसे प्रवेश कर जाएंगे, और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि योगेश, इंद्र के पास सिद्धियां हैं, और योग माया उन्हीं सिद्धियों के बल से वे गर्भ में प्रवेश कर गए। अष्ट सिद्धियां प्रसिद्ध है, और उसमें एक सिद्धि है अणिमा। अणिमा का अर्थ है कि व्यक्ति इतना छोटा हो जाता है जो पत्थर में भी प्रवेश कर सकता है। गर्भ में प्रवेश करने की बात तो बहुत आसान है। वो इंद्र उसके गर्भ में प्रवेश किए और गर्भ को नष्ट करने का प्रयास किए, और उसका रिजल्ट क्या हुआ इसको हम लोग आगे के क्लास में सुनते रहेंगे। हरे कृष्ण।